दिन भर 17 जुलाई दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। भारत के 14वें राष्ट्रपति पद के लिए मतदान समाप्त, फैसला 20 जुलाई को आएगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चुनाव के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक।
अगस्त क्रांति के 75 साल हो रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का यह अवसर है। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है।
शशिकला को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का भंडा फोड़ करने वाली डीआईजी रूपा मुद्गल का तबादला। होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। देश के नए राष्ट्रपति चुनने के लिए आज सांसदों और विधायकों ने मतदान किया। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार से है। कोविंद बिहार के राज्यपाल थे और मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रिटर्निंग ऑफिसर अनूप मिश्रा के हवाले से बताया है कि चुनाव में करीब 99% मतदान हुआ। चुनाव के नतीजे का ऐलान 20 जुलाई को किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि कतर की न्यूज़ वेबसाइट को हैक करने के पीछे उसका हाथ नहीं है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि संयुक्त अरब अमीरात ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें कतर के शासक को ईरान की तारीफ करते हुए दिखाया जाना था। ईरान खाड़ी देशों का प्रमुख प्रतिद्वंदी है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री अनवर गारगाश ने कहा कि उनके देश का हैकिंग से कोई संबंध नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के जरिए कतर और इसके पड़ोसी देशों के बीच बने कूटनीतिक गतिरोध को खत्म करने में मदद मिल सकती है। सऊदी अरब और दूसरे पड़ोसी देशों ने चरमपंथी संगठनों को आर्थिक मदद देने का आरोप लगाते हुए कतर से संबंध तोड़ दिए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले खाड़ी देशों के कदम का समर्थन किया था, लेकिन बीते हफ्ते कतर के दौरे पर गए अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा कि इस स्थिति के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास होने चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री अनवर गारगाश का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद से ऐसा संभव है। उन्होंने कहा,
अंडरस्टैंड्स लाइक अदर पार्टीज द नेसेसिटी फॉर स्टेबल रीजन।
दूसरे पक्षों की तरह अमरीका इस क्षेत्र की स्थिरता के मायने समझता है। अमरीका भी कतर के बर्ताव को लेकर चिंतित है। चरमपंथ को वित्तीय समर्थन बंद करने के लिए उन्होंने सहमति पत्र पर दस्तखत भी किए हैं। मेरा ख्याल है कि हम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के जरिए एक क्षेत्रीय प्रक्रिया की तरफ देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक देखेगा कि क्या कतर उन दायित्वों को निभा रहा है जो उसे पूरे करने चाहिए। ये थे संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय यूनियन ने आम लोगों पर रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने के संदेह में सीरिया के 16 सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर प्रतिबंध लगाया है। अप्रैल के महीने में हुए हमले में सीरिया के उत्तरी हिस्से में कई लोगों की मौत हो गई थी। रासायनिक हथियारों की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कहना है कि इस हमले में सारिन का इस्तेमाल किया गया था। सीरिया की सरकार का कहना है कि उसने प्रतिबंधित रसायन का इस्तेमाल नहीं किया था। वेनेजुएला के चुनाव पर्यवेक्षकों का कहना है कि विपक्ष की ओर से कराए गए अनाधिकारिक जनमत संग्रह में 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। ये जनमत संग्रह सरकार की संविधान को दोबारा लिखने की योजना के विरोध में कराया गया था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ज्यादातर लोगों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नई असेंबली गठन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मादुरो ने इस प्रक्रिया को बेमतलब बताया है, लेकिन वेनेजुएला के विपक्षी गठबंधन के उपप्रमुख खुलियो बोरखेस ने कहा कि जनमत संग्रह में लोगों के बड़े संख्या में हिस्सा लेने से राष्ट्रपति का डर सच में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा, वोटिंग के जरिए वेनेजुएला के लोगों ने अपनी गिनती से मादुरो को जगाने का काम किया। उनके अंदर डर था, इसलिए जनमत संग्रह पर रोक लगाई गई। यही वजह है कि सरकार कभी दोबारा चुनाव नहीं कराना चाहती है। ये थे खुलियो बोरखेस के शब्द। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद या फिर मीरा कुमार? 776 सांसदों और 4120 विधायकों ने आज गुप्त मतदान में वोट डाले, जिसके लिए 10 बजे सुबह वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग अब खत्म हो गई है और नतीजे 20 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। जो हालात दिखाई देते हैं उससे तो लगता है कि रामनाथ कोविंद के जीतने के आसार ज्यादा हैं। विनीत खरे की रिपोर्ट।
इस चुनाव में राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकते, इसलिए क्रॉस वोटिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। मॉनसून सेशन के पहले दिन नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का स्वागत किया। सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बातचीत में नरेंद्र मोदी ने कहा,
अगस्त क्रांति के 75 साल हो रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का यह अवसर है। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है। एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों का ध्यान हमेशा की तरह इस मानसून सत्र पर विशेष रहेगा।
रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की होड़ में उनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं था। उनका जन्म 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ। कोविंद ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की है। गवर्नर ऑफ बिहार की वेबसाइट के मुताबिक कोविंद दिल्ली हाईकोर्ट में 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के वकील रहे। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 16 साल तक प्रैक्टिस की। वो 1971 में दिल्ली बार काउंसिल के लिए नामांकित हुए। 1994 में कोविंद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। आलोचकों का आरोप है कि बहुत ज्यादा लोग उनके बारे में नहीं जानते क्योंकि दलितों के लिए उन्होंने कोई खास काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी के दलित नेता इसे गलत बताते हैं। उधर संसद की 5 बार सदस्य रह चुकी मीरा कुमार पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। जीएमसी बालयोगी के बाद वो दूसरी दलित नेता हैं जो स्पीकर बनी। वर्ष 1985 में वो पहली बार सांसद बनी। उन्होंने बिजनौर से चुनाव लड़ा था। साल 2009 में मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर चुनी गई थी। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी उन्हें स्पीकर की कुर्सी तक छोड़कर आए थे। मीरा कुमार ने 70 के दशक में भारतीय विदेश सेवा में नौकरी की और वो कई देशों में नियुक्त रहीं। वो भारत मॉरिशस संयुक्त आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं और ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयोग में भी काम कर चुकी हैं। साल 2009 में मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर चुनी गई। वो साल 2014 तक इस पद पर रहीं, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो बिहार के सासाराम से ही छेदी पासवान के खिलाफ लड़ीं और चुनाव हार गईं।
ये थी विनीत खरे की रिपोर्ट। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, जिसमें एनडीए उप राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार तय करेगी। ये बैठक पहले रविवार शाम को होनी थी और उसी समय एनडीए द्वारा उम्मीदवार का नाम भी जारी किया जाना था, लेकिन इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू और तमिलनाडु और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव का नाम सामने आ सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह से और पूछा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से कौन फ्रंट रनर हो सकता है।
देखिए, फ्रंट रनर पे स्पेकुलेट करना हमारे ख्याल से ये जो सरकार है उसके टाइम में बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आप देखिएगा कि मीडिया के स्पेकुलेशन अक्सर सही नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप हमसे कहें तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई नाम पे स्पेकुलेट करें। वेंकैया नायडू का नाम वैसे मैं देख रहा हूँ कि सब जगह चल रहा है, और अगर वेंकैया नायडू होते हैं तो वेंकैया डिजर्विंग भी है और एक सीनियर आदमी है जिनको राज्यसभा का बहुत जबरदस्त अनुभव है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का भी अनुभव रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और अध्यक्ष के साथ साथ कई पार्टीज में उनके अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जेपी आंदोलन के साथ उनका संबंध रहा है तो उस समय वो बहुत सारे मूवमेंट्स जो थे उनके साथ उनका एसोसिएशन रहा है। तो वेंकैया एक अच्छा नाम लगता है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि स्पेकुलेशन ही है ये, अभी हमें ये नहीं मालूम है कि ये वाकई में उनका नाम है कि नहीं।
दूसरे एक दो जो नाम लिए जा रहे हैं उसमें विद्यासागर राव का भी नाम है, जो कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और वाजपेयी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रह चुके हैं।
देखिए, विद्यासागर राव का कोई पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस नहीं है और आंध्रा के हैं वो, तो अगर वो आउट ऑफ बॉक्स कुछ ऐसा डिसीजन है वो चला आए तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें लगता है कि विद्यासागर राव जिस तरह की जरूरत वहां पे अपर हाउस में चाहिए, विद्यासागर राव उसके लिए फिट है, हमें थोड़ा उस पे शक है।
अच्छा, अगर हालांकि हम लोग स्पेकुलेट ही कर रहे हैं, लेकिन अगर मुकाबला होता है और वेंकैया नायडू कैंडिडेट होते हैं एनडीए के, तो गोपाल गांधी के खिलाफ मतलब एक तरह से सर्टेनिटी है कि वो जीतेंगे या कुछ उलटफेर भी हो सकता है?
नहीं, जो इलेक्टोरल कॉलेज की स्ट्रेंथ है अगर उसको देखिए तब तो साफ लगता है कि जो भी एनडीए का होगा कैंडिडेट एनडीए लाएगा वो आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह। कर्नाटक सरकार ने डीआईजी रूपा डी मुद्गल का तबादला कर दिया है। ये वही पुलिस अफसर हैं जिन्होंने जेल के आला अधिकारियों पर शशिकला से घूस लेने का आरोप लगाया था। इनका कहना था कि शशिकला ने वीआईपी ट्रीटमेंट पाने के लिए बेंगलोर सेंट्रल जेल के अफसरों को घूस दी। रूपा का तबादला अब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कमिश्नर फॉर ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी के रूप में किया गया है। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये तो होना ही था, कोई भी सरकार अपने ही दो अफसरों के बीच एक सार्वजनिक विवाद नहीं बर्दाश्त करती है। कर्नाटका सरकार ने आज डी रूपा को जेल विभाग के डीआईजी पद से निकालकर कमिश्नर ट्रैफिक और रोड सुरक्षा के विभाग को तबादला कर दिया है, लेकिन डीजीपी सत्यनारायण राव को कोई नई पोस्टिंग नहीं दी है। जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से वजह पूछा तो उन्होंने कहा, हम क्यों नहीं तबादला करना चाहिए, ये एक प्रशासनिक प्रतिक्रिया के तौर से किया गया है, हम पत्रकारों को हर चीज नहीं बता सकते हैं। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। दरअसल मामला जेल विभाग में भ्रष्टाचार का है। रूपा का इल्ज़ाम था कि शशिकला को खास तौर से रसोई की व्यवस्था की गई थी जब उनको वो अनुचित नहीं था। उनकी रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद सरकार का मानना था कि रूपा और सत्यनारायण राव ने सरकार के नियमों के खिलाफ सार्वजनिक विवाद में आ गए। सरकार रिटायर्ड आईएएस अफसर विनय कुमार को जांच करने के आदेश देने के बाद भी दोनों अफसर अपना विवाद बंद नहीं की थी। हालांकि सत्यनारायण राव डीजीपी पद के अफसर हैं और रूपा मशहूर डीआईजी पद के अफसर हैं। रूपा वही हैं जो पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उमा भारती को 2004 में गिरफ्तार किया था जब वे हुबली ईदगाह मैदान केस में आत्मसमर्पण करने के लिए कर्नाटका के हुबली कोर्ट पहुंच रहे थे। कर्नाटका के पूर्व डीजीपी एसटी रमेश ने कहा,
See, the putting everybody in one particular basket without finding out who is at fault or without going deep into the matter may seem to general public and media as a standard practice of the government.
बहुत लोगों को यह तबादला ऐसा दिखेगा कि यह एक सजा है, लेकिन जब सरकार एक जांच के आदेश दी है तो इसको अलग नजरे से देखा जाता है। सामान्य तौर से जब इस तरह के वाक्या होते हैं तो सरकार दोनों अफसरों को उनके पदों से हटा देती है ताकि एक निष्पक्ष जांच हो। ये थे एसटी रमेश के शब्द। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस अफसर हो या राजनीतिक हो, हर कोई मानता है कि जेल विभाग में भ्रष्टाचार होता है। थोड़े अफसर जो उनका नाम नहीं बताने के शर्त पर हमें कहा कि अगर भ्रष्टाचार को निकालना ही है तो उसका भी एक तरीका होता है, और ये मामला उस समय बाहर आ रहा है जब विधानसभा के चुनाव सिर्फ 10 महीने दूर है। जाहिर है कि कोई भी सरकार इस तरह के विवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
कब्रिस्तान पर कब्जे की कथित अफवाह के चलते वाराणसी में रविवार रात दो समुदायों में जमकर संघर्ष हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां अभी भी तैनात हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
सावन के महीने में सोमवार का दिन वाराणसी प्रशासन और पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन रविवार की रात उसके सामने अचानक एक दूसरी चुनौती आ गई। सिगरा इलाके में ये खबर फैल गई कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और फिर देखते देखते वहां अफरा तफरी मच गई। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ की गई और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। करीब 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आर के भारद्वाज,
मुकदमा लिखा गया है, लोगों को आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जा रही है।
कितने
भ्रम फैलाया था?
अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ?
अभी ये डिटेल इमीडिएटली नहीं मिल पाएगी, लेकिन मुकदमा लिखा गया है, कार्रवाई की जा रही है।
दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ?
नहीं, दोनों पक्षों के खिलाफ नहीं, जिन्होंने अफवाह फैलाई थी कि मस्जिद के ऊपर में हमला किया गया है और ये है वो है, उसकी वजह से उन्होंने रिएक्शन किया उसकी तरफ से।
पुलिस का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन सिगरा इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वाराणसी के डीएम योगेश्वर राम मिश्र कहते हैं,
सारी चीजें कंट्रोल है, अफवाह टाइप की थी, उसको अटेंड किया गया।
योगेश्वर राम मिश्र ने घटना की वजह के बारे में बताया कि कब्रिस्तान के पास ही मिंटू सिंह नाम के किसी व्यक्ति की जमीन है। हालांकि जमीन विवादित है, लेकिन उन्होंने उस पर स्टे ले रखा है। डीएम के मुताबिक रविवार को उन्होंने अपने कुछ मवेशियों को कब्रिस्तान के पास बांध दिया और उसी के बाद ये अफवाह उड़ी कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल, इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार वहां का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर नाराजगी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ FIR क्यों हुई। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। 13 जुलाई को घरों में काम करने वाली कई महिलाओं और उनके रिश्तेदारों ने दिल्ली से सटे नोएडा में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में जमकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि उनकी एक साथी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सोसाइटी में रहने वाली एक परिवार ने महिला पर चोरी का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने करीब दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया है और कई झुग्गी झोपड़ियों में बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। हमारे साथी विनीत खरे ने नोएडा में घरों में काम करने वाली कुछ महिलाओं से बात की और सबसे पहले पूछा कि बिजली पानी कटने से उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है।
ये तो कम से कम 5 दिन से
5 दिन से कटा है, तो क्या परेशानी है उससे फिर यहाँ पे?
5 दिन से गर्मी है, पानी नहीं है, परसों तो ऐसे हो गया पीने का पानी नहीं है, लाश फट जाता है इतना गर्मी से, नहाने नहीं पाता है।
कितने दिन से नहीं नहा रही है?
नहीं, 5 दिन से कोई नहा धोआ नहीं है। घर पे तो कितना कपड़ा कपड़ा हो गया, पीने का पानी तो सड़क करके लेके खाता है।
अच्छा, ये छोटे छोटे घर है, ये करीब 1,000 या 1,200 के किराए पर किराया देकर ये लोग 1,500 दे रहे हैं। थोड़ा सा इधर आएंगे सुखिए, कितना 1,500 किराया है? कोई बता रहा था 1,000 है?
1,500 किराया लेता है।
अच्छा, तो कैसे, जो आप तो 1,500 खुद ही कमाती हैं, 1,000-1,500 तो किराया हो गया, तो खर्चा कैसे चलता है आपका?
बहुत दिक्कत करते चल रहा है, बहुत दिक्कत है। खाने का 4 आदमी है, खाने आने का बहुत बड़ा बार हो जाती है, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाती है, दुकान से मंगा लेता है, पेमेंट रुक जाती है, फिर उनको दे देता है। कैसे करके पूरा महीना दिक्कत करके ही चल रहा है।
अच्छा, ये कई लोगों ने भी कहा गया, अरे भाई ये तो बांग्लादेश से आए हैं लोग, बांग्लादेशी हैं, इस तरह की कोई परेशानी होती है उसकी वजह से, जो सोच है उसको लेकर परेशानी होती है?
नहीं, उसकी वजह से परेशानी नहीं है, लेकिन हम लोग का डॉन नहीं कहते, हम लोग को तो बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग का बंगाल है, कुचबिहार हमारा गांव है।
कहाँ? कुचबिहार से आए हैं?
कुचबिहार से आए हैं, इसलिए हम लोग का कोई डॉन नहीं लगता है।
किसी के घर में जाना, आप उन्हें जानती नहीं है, उनके घर में खाना बनाती है, वो एक रिश्ता शुरुआत में बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। किस तरह की परेशानी होती है या फिर वो किन चीजों से आपको समझौता करना पड़ता है जब किसी घर आप जाती हैं? अनजान घर
चीज से समझौना पड़ता है, जो भी बोलते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, अगर कोई काम के लिए बोल देते हैं, और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं जितने घर में काम करते बहुत अच्छा, कोई किसी को बाथरूम जाने के लिए मना करता, मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई मना नहीं करता।
अच्छा, अगर वॉशरूम में टॉयलेट जाना है आपको,
मना नहीं करता,
तो आप उनके यहाँ जा सकती हैं? लेकिन ये बहुत रेयर है, मतलब
जैसे मुझे तो किसी ने मना नहीं किया। अच्छा, मुझे इसके बारे में नहीं।
लेकिन आपने कई जो साथी होंगी वो अगर जाना चाहती हैं,
किसी किसी को पानी भी नहीं पीने देते, कोई कोई मैडम
क्या कहती हैं,
कोई बोला अगर पानी पीना तो हमने से पूछ के पीजिए।
अच्छा,
अगर कोई ऐसे भी है तो अपना बाथरूम जाना, अपने घर से बाथरूम करके आओ, उसको अगर जरूरी हो जाए, उसको जाना है तो ये तो फिर गलत है, उसको जाने देना चाहिए। अगर आपकी बात में नहीं जाने दोगे, कोई जो नौकर के बाथरूम है उसमें जाने दीजिए।
सुनाली, मुझे सुबह कितने बजे उठती हैं आप, कैसे दिन आपका कैसे बीतता है? सुबह कितने बजे उठती हैं, रात में कितने बजे सो पाती हैं?
हमारी तो आदत ही पड़ गई है।
फिर भी
सुबह में 5 बजे उठती हैं, 5:30 बजे काम पे जाते हैं।
तो आधे घंटे में सब तैयार हो जाती हैं जाने के लिए। खाने वाने का क्या होता है आपका?
खाने आने का सुबह तो खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता।
तो फिर खाना कितने बजे खा पाती हैं? फिर आप 5:30 बजे यहाँ से निकली, सोसाइटी कितने बजे पहुँचती हैं? फिर
6 बजे
सोसाइटी,
6 बजे मतलब काम पे पहुँचना है।
6 बजे काम पे पहुँचना है और ये काफी दूर है मैं देख रहा हूँ।
दूर तो है लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं।
तो 6 बजे काम, 6 बजे से कब तक काम करती हैं? कितने बजे?
6 बजे से 9:30-11 जब जिसकी जैसे मर्जी।
खाना अभी तक आपने नहीं खाया? 11 बज गए अभी तक लेकिन खाना नहीं मिला आपको?
नहीं, जब काम से आएंगे खाएंगे तब तो।
11 बजे फिर आपका काम खत्म हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे 11:30 बजे आप घर में
आते हैं, खाना बनाते खाते हैं।
तो पहला खाना जो होता है वो कितने बजे खाती फिर दिन में आप?
कभी 11 बजे भी खाते, कभी 10 बजे भी खाते, कभी 1 बजे भी खाते, कोई जरूरी थोड़ी नहीं
सुबह है, पूरा
एक ही टाइम से मिलते हैं।
उसके बाद से जैसे आपने 12 बजे खाना खा लिया, उसके बाद से
थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर 4 बजे काम पे जाते हैं,
4 बजे
8 बजे फिर काम से आते हैं।
तो अगला खाना फिर आपको कब मिलता है?
फिर रात के 9:10 बजे तक।
तो आप 11:12 के आसपास 1 बजे तक खाना खाती हैं, उसके बाद 10 बजे खाना खाती हैं, दो मील्स
एक बार 11:12 बजे जैसे काम पे जाते हैं तब एक बार खाते, एक बार रात को खाते, सुबह खाने के हमें मौका नहीं मिलता क्योंकि हम सुबह काम पे चले जाते हैं।
और कभी किसी ने बोला है कि आप हमारे यहाँ खा लीजिए खाना या अगर भूख लगी है तो?
जैसे मैं काम करती ना तो बोल देते चाय आई पी लीजिए।
एक तरीका से सब लोग नहीं होता, कोई एक कप चाय नहीं पिलाता, कोई 10 बजे आ जाता।
नोएडा में काम करने वाली महिलाओं की परेशानियां बात कर रहे थे विनीत खरे। और इस बीच खबरें आ रही हैं कि एनडीए ने सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। 5 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और एम वेंकैया नायडू का मुकाबला होगा गोपाल कृष्ण गांधी से। आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं इंदु पांडे और मुकेश शर्मा।
आपकी राय,
आपकी राय में आज मैं हूं मुकेश शर्मा और मेरे साथ हैं इंदु पांडे।
नमस्कार। तो चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये संजय कुमार झा हैं, मधुबनी भारत, इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है। इन्होंने हमें बहुत प्यारी चिट्ठी भेजी है। कहते हैं कि मेरे पास कलर टेलीविजन है, नेट पर भी कभी कभी जाता हूं, लेकिन जो आनंद रेडियो सुनने में मिलता है और वो भी BBC, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है।
हाँ बिल्कुल, BBC अलग अलग माध्यम से अपने श्रोताओं के पास पहुंचने की कोशिश करता है और हमारे जो रेडियो के श्रोता हैं वो ख़ास तौर पर एक जुड़ाव है हम सब का एक दूसरे के प्रति और इस रेडियो के माध्यम से भी, चूँकि आवाज़ एक दूसरे की सुन पाते हैं तो एक अलग तरह का संबंध तो है ही।
और अश्वनी कुमार का मेल है करनाल हरियाणा से, लिखते हैं कि आपने जो BBC हिंदी का ये जो प्रयास है पॉडकास्ट डाउनलोड करने वाला वो बहुत ही सराहनीय है और सिक्किम पर विवेचना जो हुई बहुत अच्छा लगा उनको। और इसके साथ साथ बाकी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड आया है हमारे पास चुरू राजस्थान से, ये भी कहते हैं कि आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। इनका नाम है भवेश भदौलिया दुर्ग कॉलोनी से। और दिलीप बारपेटे कई सालों से BBC सुन रहे हैं लेकिन उन्होंने पहली बार हमें मेल किया है।
अच्छा।
और ये अंध विद्यालय में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की और वहीं के हॉस्टल में रह के इन्होंने रेडियो सुना। और वसुतुल्ला खां की डायरी इनको बहुत अच्छी लगती है, साथ में तमाम उन लोगों के नाम हैं जो हमारे साथी हैं BBC में।
ये बहुत ही अच्छा लगा कि पहली बार इन्होंने चिट्ठी लिखी है। हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और लंबे समय से हमको सुनते आ रहे हैं। इन्होंने लिखा भी है, जैसा कि टेक्नोलॉजी की मदद से अब ये चिट्ठी भी भेज पाए हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपकी चिट्ठी पढ़ के हमको। और चिट्ठी में एक जो जिक्र है पॉडकास्ट का, हमारे बाकी श्रोताओं के लिए भी, अगर वो हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर आते हैं तो वहाँ पर अब जो रेडियो कार्यक्रम है वो पॉडकास्ट के रूप में उपलब्ध है, यानी कि वो उन्हें डाउनलोड करके सुन सकेंगे। तो ये एक सुविधा अभी शुरू हुई है। हर अलग अलग फीचर यानी अलग अलग जो हमारे कार्यक्रम हैं उनके लिए अभी नहीं हुई है, लेकिन हाँ जो दोनों कार्यक्रम हैं वो पूरे के पूरे मौजूद हैं।
और अर्जुन दान चारण कर्मावास से ये हमें मेल लिखते हैं कि BBC का 75 सालों का साथ, जाने कब 76 साल का होगा। BBC कुछ आगे बढ़ो।
ये साथ यूं ही बना रहेगा और हमारे कार्यक्रम आप तक यूं ही पहुंचते रहेंगे और ये साथ इसी तरह वर्ष दर वर्ष मजबूत होता रहेगा।
और संग संग गुनगुनाओं के लिए भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हैं और ये हैं धैर्य अहमदाबाद से, लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है यतीन्द्र मिश्र का।
यतीन्द्र जी, जितनी बार यहाँ आते हैं हम सब लोग एक सुर में आप जितने लोगों की तारीफ है वो उन तक पहुँचा रहे हैं और वो भी जान के बहुत खुश होते हैं कि उनकी ये जो कोशिश है, उनकी जो प्रस्तुति है वो लोगों को अच्छी लग रही है।
और ये मेल है आर्यन यादव साहब का, लिखते हैं कि 13 जुलाई से बीबीसी नेट पर नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ कीजिए।
अब पॉडकास्ट आ गया है नेट पर ही, तो अब मेरे ख्याल से उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी।
और क्यूरियस माइंड का हमारे पास मेल आया है, और मैंने बहुत
mind.
बहुत नाम ढूंढने की कोशिश की, मुझे तो नहीं मिला। लिखते हैं कि आपका दिन भर कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ट्विटर पे फॉलो भी करता हूँ, लेकिन जो लोग बहुत भद्दे कमेंट करते हैं मुझे बहुत ख़राब लगता है, और ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों का काम बहुत अच्छा है और आपको हताश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
बहुत अच्छा लगा जो बातें लिखी हैं, ये सही बात है, कई बार हम लोग भी जब वो टिप्पणियाँ पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर भी, तो ये लगता है कि क्यों इस तरह की भाषा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पर हर तरह के लोग हैं, कुछ बहुत ही आप जैसे समझदार और सुलझे हुए विचारों के लोग भी हैं, वो भी लिखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो आलोचना सकारात्मक आलोचना है उसको ज़रूर सुने, पर अभद्र टिप्पणियों के ज़रिए या सिर्फ अनावश्यक टिप्पणियों के ज़रिए अगर अपनी बात रखेंगे तो कोई सार्थक संवाद नहीं हो सकता। अगर आपकी नाराज़गी भी है, हम नाराज़गी सहते ही हैं और उसके ऊपर बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कम से कम शिष्ट भाषा में और एक सार्थक रूप से अगर वो नकारात्मक टिप्पणी भी हो तो भी हम स्वीकार करते हैं।
तो बस आप तैयार हो जाइए एक शिकायत सुनने के लिए।
हाँ बिल्कुल।
अमित पांड्या हैं अहमदाबाद से, कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा पे जो आपका प्रोग्राम था उसमें जो बस की घटना हुई थी, तो आपने वहाँ पे इस्तेमाल किया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, ना कि जम्मू एंड कश्मीर, इनको बहुत बुरा लगा।
देखिए ये तो बीबीसी की एक नीति के तहत ये और कोई अभी नई बात इधर की कोई बदली हुई नीति नहीं है, बीबीसी हमेशा से भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर कहता है, क्योंकि इन क्षेत्रों का जो प्रशासन है ये इन जगहों पर है, इसलिए बीबीसी की जो शब्दावली है उसके तहत ये है, कोई अलग से या नई नीति के तहत ऐसा नहीं किया जा रहा है। लोग इसी तरह अपनी चिट्ठियां हम तक भेजते रहें, इसके लिए एक बार पता मैं फिर से बता देता हूं। आपकी राय बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर ईमेल भेजना चाहें तो
hindi.letters@bbc.co.uk।
तो अब हमें अनुमति दीजिए,
नमस्कार।
और अब नजर दौड़ाते हैं खेल समाचारों पर।
बीबीसी खेल समाचार के साथ मैं हूं वैभव दीवान। टेनिस में विंबलडन कल खत्म हुआ, जहां पर यह खिताब रॉजर फेडरर ने जीता। इस जीत के साथ रॉजर फेडरर की एटीपी रैंकिंग्स में सुधार हुआ है, वो अब विश्व नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी हो चुके हैं। उन्होंने नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ा है। नंबर 1 अभी भी एंडे मरे हैं, नंबर 2 स्पेन के राफेल नडाल। वहीं भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने इस एटीपी रैंकिंग्स में 16 पायदान ऊपर छलांग मारी है। उनके टेनिस और उनकी इस रैंकिंग के बारे में बात की बीबीसी ने पूर्व डेविस कप खिलाड़ी जीशान अली से, और उनका कहना था,
इस साल जो जाके राम कुमार ने कुछ परफॉर्मेंसेस दिए हैं वो दिखाता है कि उसमें ऑब्वियसली पोटेंशियल है, उसमें ये कैपेबिलिटीज है कि वो टॉप 150 या टॉप 100 इन द वर्ल्ड में आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अपने पोटेंशियल के मतलब कि फुल कैपेसिटी अभी तक उन्होंने अपनी खेली नहीं है वो, तो आई एम होपिंग कि गोइंग फर्दर, उनकी एज 22 है, इस साल वो 23 के हो जाएंगे। आई एम होपिंग कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जो है राम कुमार अपने फुल पोटेंशियल पे खेले, जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है वो उसका पूरा फायदा उठाएं।
अपने सिंगल्स करियर की सबसे बेहतरीन रैंकिंग पाई है राम कुमार रामनाथन ने, वो 168 168वें स्थान पर हैं।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के मुताबिक वो कल नामांकन करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव 5 अगस्त को होगा। देश के नए राष्ट्रपति चुनने के लिए आज सांसदों और विधायकों ने मतदान किया। चुनाव के नतीजे का ऐलान 20 जुलाई को किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि कतर की न्यूज़ वेबसाइट को हैक करने के पीछे उसका हाथ नहीं है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रिहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।